डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 17:8 ईसा 14-16 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशाया की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 8 यशाया अध्याय 14-16 है। खैर, दीवार पर लगी घड़ी 7 बजने का संकेत दे रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। थैंक्स गिविंग के इस मौसम में भगवान, हमारे दिल उन सभी चीजों की ओर मुड़ जाते हैं जिनके लिए हमारे पास धन्यवाद देना है। बाकी सब चीजों से ऊपर हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप स्वतंत्र रूप से आए हैं। स्वेच्छा से तुम जो स्वयं जीवन हो, हमारे लिए मृत्यु बन जाओगे। धन्यवाद अनंत जीवन के वादे के लिए। धन्यवाद हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद जो हमें इस दुनिया में दिन प्रतिदिन अपना जीवन जीने में सक्षम बनाता है। अपनी संपूर्ण सुंदरता के साथ इस अद्भुत रचना के लिए धन्यवाद। उसका सारा क्रम, उसका सारा आश्चर्य। इस अच्छी भूमि के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दी है। उन लोगों के लिए धन्यवाद जो हमसे पहले चले गए, जो आपके प्रति वफादार रहे और हमें मुक्ति और आशा का संदेश दिया। धन्यवाद केंटुकी के इस छोटे से शहर के लिए। धन्यवाद पिछले 125 वर्षों में आपने यहाँ जो हासिल किया है उसके लिए धन्यवाद। हम असबरी विश्वविद्यालय और असबरी सेमिनरी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम फ्रांसिस असबरी सोसाइटी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु शहर में अन्य सभी संगठनों के लिए। जाओ इंजीलवाद के संसाधन अन्य लोग एक खोई हुई दुनिया तक पहुंच रहे हैं। धन्यवाद यीशु इस स्वतंत्रता के लिए। धन्यवाद कि हमें आज शाम यहाँ आना है और आपके वचन का अध्ययन करना है। और हम दुनिया भर के उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेते हैं और फिर भी आपसे प्यार करने, आपकी पूजा करने और आपके लिए जीने के लिए दृढ़ हैं, भले ही इसका मतलब मौत हो। उनकी वफादारी के लिए धन्यवाद। और हम उनके साथ जुड़ते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें मजबूत करेंगे, उन्हें खड़े होने में सक्षम बनाएंगे। और फिर हम आज शाम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर भगवान कृपया अपना वचन हमारे सामने रखें। हमारी सहायता करें कि जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं, हम में से प्रत्येक आपकी आवाज को हमसे बात करते हुए, हमें चुनौती देते हुए, हमें दोषी ठहराते हुए, हमें प्रोत्साहित करते हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए सुन सके। हे भगवान, तुम्हें हमसे जो कुछ भी कहना है हम तुमसे कहते हैं, कहो और हम तुम्हारे नाम पर तुम्हें धन्यवाद देंगे। तथास्तु। खैर, आज शाम बारिश, अंधेरे और इन सभी चीजों के बावजूद आप में से प्रत्येक को फिर से यहाँ देखकर खुशी हो रही है। आने के लिए धन्यवाद। हम यशायाह को देख रहे हैं और हम वास्तव में अगले 4 हफ्तों के लिए मिलेंगे। 2 सप्ताह की छुट्टी एक लंबे समय की तरह लग रही थी, इसलिए मैं उन 4 हफ्तों के लिए आभारी हूँ जिनमें हम एक साथ मिल सके। हम राष्ट्रों से संबंधित यशायाह के संदेशों को देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जैसा कि मैं पुस्तक को समझता हूँ, यह उस खंड का पहला भाग है जिसे हम विश्वास में पाठ कह सकते हैं, जो अध्याय 13-35 तक फैला हुआ है। आहाज परीक्षा में विफल रहा। उसे भगवान पर भरोसा नहीं था। उन्होंने चुनौती के क्षण में भगवान पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और इसलिए ऐसा लगता है मानो भगवान कह रहे हो, ठीक है, चलो पाठ्य पुस्तक पर वापस चलते हैं। आइए कक्षा में वापस जाएं और उन कारणों पर गौर करें जिनकी वजह से आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। हमने कहा है कि कई मायनों में अध्याय 6 पूरी किताब के लिए एक मॉडल है, मानवीय अक्षमता का एक दर्शन, ईश्वर का एक दर्शन, स्वयं का एक दर्शन और शुद्धिकरण का एक अनुभव है। और मुझे ऐसा लगता है कि मानवीय अक्षमता का दर्शन, ईश्वर का दर्शन और स्वयं का दर्शन वही है जो हमारे यहाँ अध्याय 7 से 39 तक है। और ईश्वर का सेवक होने की कुंजी उस पर भरोसा करने में सक्षम होना है। तो यहाँ अध्याय 13 से 23 में हमारे पास परमेश्वर की चेतावनी है। राष्ट्रों पर भरोसा मत करो, इंसानियत पर भरोसा मत करो। और हमने अपने पिछले सत्र में देखा, जब हम अध्याय 13 और 14 के बारे में बात कर रहे थे, कि बेबीलोन एक तरह से मानवीय महिमा और शक्ति और वैभव के समग्र प्रतीक के रूप में स्थापित है। और परमेश्वर ने उन अध्यायों में कहा, बेबीलोन भूमि पर गिरा दिया जाएगा। हमने पिछली बार इस तथ्य के बारे में बात की थी कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक बेबीलोन का लगभग उसी तरह उपयोग करती प्रतीत होती है। जॉन के समय में बेबीलोन फ्रात नदी पर एक छोटा सा गांव था। उदाहरण के लिए इसकी तुलना किसी भी दृष्टि से रोम से नहीं की जा सकती। और कई लोगों का मानना है कि जब जॉन बेबीलोन का उपयोग करता है तो वह वास्तव में रोम के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जॉन बस यशायाह के नेतृत्व का अनुसरण कर रहा है और बेबीलोन उस सब का प्रतीक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आज रात अध्याय 14 श्लोक 24 में हम पृथ्वी पर वापस आते हैं। हम उन विशिष्ट ऐतिहासिक वास्तविकताओं पर वापस आते हैं जिनका यहूदा यशायाह के समय में सामना कर रहा था। इसलिए जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि के तहत पहले कथन में नोट किया है, असीरिया, फिलिस्तिया, मोआब, सीरिया और इसराइल राष्ट्रों को अध्याय 14, 24 से अध्याय 17, 11 के बीच संबोधित किया गया है। इसलिए हम एक प्रकार से व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। मानवता अपनी सारी महिमा में ईश्वर होने के अपने सारे दिखावे में गिर जाएगी। चौड़ा कोण। अब हम एक संकीर्ण कोण पर आते हैं और अब उन विशिष्ट राष्ट्रों के बारे में बात करते हैं जो यहूदा के लिए खतरा थे और यह भी कि यहूदा उन्हें बचाने के लिए भरोसा करने के लिए इच्छुक हो सकता है। तो हम अध्याय 14 के श्लोक 24 से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ नोटिस करें। अध्याय 13 श्लोक 1 पर वापस जाएं। वह श्लोक क्या कहता है? क्या किसी ने इसे पढ़ा? क्या आकाशवाणी, अन्य कौन से अनुवाद, भविष्यवाणी, संदेश, धार? हां, हिब्रू का शाब्दिक अनुवाद बोझ है। लेकिन यह समझा जाता है कि यह एक संदेश है जो ईश्वर ने पैगंबर को दिया है और इसलिए हमारे पास वह है। अब अध्याय 14 श्लोक 28 पर जाएं। किसी ने उसे पढ़ा है? वहां फिर से ओरेकल है या संदेश या बोझ या वह वहां है। लेकिन अब अध्याय 14 24 को देखें। यह वहां नहीं है, है ना? नहीं। और मेरा मानना है कि जो हो रहा है वह यह है कि आपने एक प्रतिनिधि के रूप में बेबीलोन के बारे में बात की है। और निस्संदेह बेबीलोन एक मेसोपोटामिया शक्ति है। वे वहां हैं जो आज इराक है। और इसलिए बेबीलोन मुझे लगता है प्रतिनिधि है। और असीरिया अब उस मेसोपोटामिया की शक्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति है जो यशायाह के समय में यहूदा को धमकी दे रही थी। तो फिर हम प्रतीक के रूप में चौड़े कोण से संकीर्ण बेबीलोन की ओर चले गए हैं, मेसोपोटामिया की शक्ति की वर्तमान वास्तविकता के रूप में असीरिया जो उन्हें धमकी दे रहा है। ठीक है, अब श्लोक 24, 26, 27 में दोहराए गए शब्द या अवधारणा पर ध्यान दें। बार बार दोहराया जाने वाला शब्द उद्देश्यपूर्ण नियोजित क्या है? हाँ, उद्देश्यपूर्ण और नियोजित वे दो शब्द इस बहुत ही छोटे खंड में 5 और 6 बार दोहराए गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि मुद्दा क्या है? अश्शूर के इस राक्षसी साम्राज्य से भयभीत यहूदा के लोगों से परमेश्वर क्या कह रहा है? यह उसके हाथ में है। अध्याय 8 में याद रखें, जिसे ये लोग साजिश कहते हैं उसे साजिश मत कहो, बल्कि मुझे पवित्र बना। यदि आप किसी चीज से डरने वाले हैं तो मुझसे डरें। तो यहां फिर से भगवान लगातार हमारी आंखों को ऊपर उठाने और हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे भगवान काम कर रहे हैं और भगवान अपने अच्छे उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। अब आज हमारे पास ऐसे प्रेरित भविष्यवक्ता नहीं हैं जो हमें सटीक रूप से बता सकें कि ईश्वर का उद्देश्य क्या है, लेकिन सामान्य सत्य अभी भी सही है। वह परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासित करने के लिए संसार के राष्ट्रों का उपयोग करता है। वह अपने लोगों को दंडित करने के लिए दुनिया के देशों का उपयोग करता है। परमेश्वर अपने लोगों को उस स्थान पर ले जाने के लिए दुनिया के राष्ट्रों का उपयोग करता है जहां उन्हें उस पर भरोसा करना होगा। वे सभी चीजें आज भी परमेश्वर के उद्देश्यों में उतनी ही हैं जितनी तब थीं। तो असीरिया जो कुछ भी सोचता है कि वे कर रहे हैं, वे वास्तव में भगवान के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। और यह ऐसी चीज है जिसे हमें शाम की खबरें देखते समय लगातार खुद को याद दिलाने की जरूरत है। हमारे लिए सभी चीजों को असंतुलित करना बहुत आसान है। ओह, अब वे क्या करने जा रहे हैं? क्या हुआ है? अरे बाप रे, उन लोगों के बारे में क्या? क्या के बारे में? क्या के बारे में? क्या के बारे में? क्या भगवान के बारे में? जैसी मैंने योजना बनाई है वैसा ही होगा। जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही यह खड़ा होगा। श्लोक 25। मैं अश्शूर को अपने देश में तोड़ डालूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पांवों से रौंद डालूंगा। उसका जुआ उन पर से, उसका बोझ उनके कंधे पर से उतर जाएगा। आइए अध्याय 37 श्लोक 36 से 38 तक को देखें। अश्शूरियों ने दो को छोड़कर देश के सभी किलों पर कब्जा कर लिया है। लाकीश तट क्षेत्र और यरूशलेम के किनारे पर है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और यहोवा का दूत निकला और अश्शूरियों की छावनी में 175,000 पुरुषों को मार डाला। और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा कि लोथें पड़ी हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चला गया और घर लौट आया। मैं भी होऊंगा। इसलिए जब भी ये शब्द बोले गए वे एक विशिष्ट भविष्यवाणी थे कि भगवान शक्तिशाली अश्शूर के साथ क्या करने जा रहे थे। वे जो भी योजना बनाते हैं, जो भी उद्देश्य रखते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य प्राप्त होने वाले हैं। अब 26 और 27 में वाक्यांश को देखें। यही वह उद्देश्य है जो पूरी पृथ्वी के संबंध में बताया गया है। और ये क्या है? वह हाथ जो फैला हुआ है। और 27 में इसे फिर से देखो। सेनाओं के यहोवा ने जो युक्ति की है उसे कौन नष्ट करेगा? उसका हाथ फैला हुआ है और उसे कौन लौटाएगा? यदि आप अध्याय 10 पर वापस जाएं, चलो वहां वापस चलते हैं। अध्याय 10 श्लोक 4 उस कविता का अंत है जो 9-8 बजे शुरू हुई थी। चार छंद, प्रत्येक छंद उसी पंक्ति के साथ समाप्त होता है जो आपके पास 10 में से 4 श्लोक में है। और 4, इस सब के बावजूद उसका क्रोध शांत नहीं हुआ है और उसका हाथ अभी भी फैला हुआ है। भगवान की मुट्ठी उठी हुई है। असीरिया चाहे कितना भी शक्तिशाली प्रतीत हो, यह ईश्वर की मुट्ठी है जो अंततः असीरिया को जवाबदेह ठहराने वाली है। और इसलिए भगवान कहते हैं, यदि आप किसी चीज के बारे में चिंतित होने जा रहे हैं तो अश्शूर के बारे में चिंतित न हो। भगवान की चिंता करो, अपने उद्देश्यों को उसके उद्देश्यों के विरुद्ध बनाएं और आप एक ईंट की दीवार से टकराने वाले हैं। लेकिन अपने उद्देश्यों को उसके उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित करें। और अगले वसंत में हम भगवान की शक्तिशाली भुजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आस्तीन ऊपर चढ़ाकर अपने लोगों की रक्षा के लिए। ये तो यह सिर्फ हमारी स्थिति का प्रश्न है जो यह निर्धारित करता है कि वह मुक्का हम पर पड़ता है या हमारे दुश्मनों पर। और दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि हम यशायाह 53 में देखेंगे, सूखी जमीन से निकली जड़ दुनिया को छुड़ाने के लिए बढ़ाई गई ईश्वर की शक्तिशाली भुजा है। ठीक है, हमारे पास जो समय है उसके हिसाब से हमें यहाँ आगे बढ़ना होगा। इसलिए जैसा कि मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बेबीलोन के साथ प्रतीकात्मक व्यवहार असीरिया पर केंद्रित है। और यह कथन कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका मालिक भगवान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक दैवज्ञ पर आते हैं, एक संदेश जो एक विशिष्ट राष्ट्र के विरुद्ध निर्देशित है। शक्तिशाली साम्राज्य और निकट पड़ोसी। याद रखें, फिलिस्तिया यहूदा के दक्षिण पश्चिम में तट पर है। यदि आप यहाँ मानचित्र देख रहे हैं तो यहूदा यहाँ है, फिलिस्तिया यहाँ तट पर है। पांच शहरों से बना है और वे पांच नगर पलिश्तियों के नगर थे, और पलिश्ती और यहूदी पहाड़ी देश के लिए लगातार लड़ते रहते थे। यहूदा यहाँ पहाड़ी पर है, फिलिस्तिया यहाँ तट पर है, और दोनों के बीच में कुछ घुमावदार पहाड़ियां हैं जिन्हें तराई क्षेत्र कहा जाता है, और यहूदी लगातार तट की ओर बढ़ रहे हैं, फिलिस्ती लगातार पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। और वह क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पूरे इतिहास में उनके बीच विवाद का क्षेत्र बन गया। इसलिए जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने आपको पहले बताया है कि हिजकिया और आहाज की तारीखें सभी इसराइली और यहूदी राजाओं में सबसे अधिक समस्याग्रस्त हैं। लेकिन संभवतः आहाज की मृत्यु लगभग 716 में हुई। क्या यह सही है? हाँ, मैं गलत हूँ। नोट्स पर मेरे पास 516 है। यह गलत है। ऐसा लगता है कि आहाज की मृत्यु 716 में हुई थी। इसलिए अब हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यशायाह को 739 में दर्शन हुआ। दमिश्क 732 में नष्ट हो गया। सामरिया 722 में नष्ट हो गया। और अब हम 716 पर आ रहे हैं। जिस वर्ष राजा आहाज की मृत्यु हुई, यह संदेश आया। हे पलिश्तियों, तुम सब आनंद मत करो कि जिस छड़ी ने तुम्हें मारा था वह टूट गई, क्योंकि सांप की लाठी से एक नाग निकलेगा, उसका फल एक उड़ने वाला उग्र सर्प होगा। कंगालों का पहिलौठा चरेगा और दरिद्र लोग निडर बैठे रहेंगे। परंतु मैं तेरी जड़ को भूख से नष्ट करूंगा और तेरे बचे हुए को भी वह मार डालेगा। संभवतः यशायाह यहाँ जिस बात का उल्लेख कर रहा है वह यह है, हे भगवान, यहूदी राजा, हमारा वंशानुगत शत्रु मर गया है, तो यह हमारे लिए बड़ा मौका है। और यशायाह कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, यह आपके लिए कोई बड़ा मौका नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है। विशेष रूप से मैं चाहता हूं कि आप फिलिस्तिया और यहूदा के भिन्न भविष्य पर ध्यान दें जो यहां है। 29, 30 और 31 के अनुसार फिलिस्तिया का भविष्य क्या है? अकाल, विनाश, मृत्यु, हाँ। लेकिन पद 32 के अनुसार यहूदा का भविष्य क्या है? शरण। यहोवा ने सियोन की स्थापना की है और उसकी प्रजा के दुःखी लोग उसमें शरण पाएंगे। यह एक ऐसा विषय है जो बार बार आता रहता है। मोआब के संबंध में हमारे पास कुछ मिनटों में फिर से बात करने का कारण होगा, लेकिन विषय यह है कि अवशेष तो होंगे ही। विनाश आ सकता है, लेकिन अवशेष भी रहेगा। परमेश्वर ने सियोन की नींव रखी है, और यही बात मैंने बार बार कही है। विनाश कभी भी ईश्वर का इच्छित अंतिम शब्द नहीं है। क्या विनाश हो जाएगा? हाँ, लेकिन यह अंतिम होने का इरादा नहीं है। एक अवशेष वापस आ जाएगा, पलिश्ती नहीं, और निश्चित रूप से वे चले गए हैं। फिलिस्ती लोग आज लोगों के रूप में मौजूद नहीं हैं, लेकिन भगवान के लोग ऐसा करते हैं। सभी बाधाओं के बावजूद प्रभु ने सियोन की स्थापना की है, और उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण पाएंगे। भगवान अपना वचन निभाते हैं। तो फिर यह मुद्दा, आप पलिश्तियों पर भरोसा क्यों करेंगे? पलिश्तियों का नाश होने वाला है, और यदि उनके लिए कोई आशा होती तो वह तेरे परमेश्वर से होती। आप राष्ट्रों पर भरोसा क्यों करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संस्थापक पिता कितना विश्वास करते थे, इस बारे में लगातार बहस होती रहती है, और आपको दोनों तरफ से तर्क मिल सकते हैं। लेकिन मेरे लिए यह दिलचस्प है कि वाशिंगटन कह सकता है कि गठबंधन में उलझने से बचें। मेरा मानना है कि उसकी वह प्रवृत्ति बाइबल से विकसित होती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा से बारंबार कहता है, अन्य जातियों पर भरोसा मत करो। आप यह नहीं कर सकते। अब आप कहें, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत बहुत दिलचस्प है। जाहिर है, फ्रांसीसी के साथ गठबंधन अमेरिकी क्रांति के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और फिर भी वाशिंगटन कह सकता है, सावधान रहें, ध्यान रहें। ठीक है, अध्याय 14 में श्लोक 24 से 32 तक हमने क्या कवर किया है, इसके बारे में कोई टिप्पणी या प्रश्न? हमारे लिए यहाँ क्या सबक है? मैं जो कह रहा हूँ उससे आपने क्या सीखा है? हाँ, और हम कहते रहे हैं, और आप राष्ट्रों पर भरोसा नहीं करते हैं, आप दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे भी नष्ट होने वाले हैं। हाँ, 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 राष्ट्रों पर भरोसा मत करो, क्योंकि उनका भी न्याय किया जाएगा। यह कौन नहीं जानता? वे राष्ट्रों का अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए यह जानना थोड़ा कठिन है कि उन्हें किस राष्ट्र का अनुसरण करना है या क्या करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका उत्तर है, किसी भी राष्ट्र का अनुसरण न करें, लेकिन अगर वे एक राष्ट्र का हिस्सा हैं। ओह, ठीक है, वह कह रहा है, यहूदा के परमेश्वर पर भरोसा रखो, यहूदिया के राजाओं पर भरोसा मत करो, उस ईश्वर पर भरोसा रखें जिसने इस राष्ट्र को अस्तित्व में लाया है। उसने सियोन की स्थापना की है, और वह उसे शरण स्थान बनाएगा। यह सही है। जब आप राष्ट्र कह रहे हैं, तो आप राजाओं, राष्ट्रों के नेताओं और उस जैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो भगवान से प्यार करने का दिखावा नहीं कर रहे हैं। कम से कम उनमें से कुछ तो दिखावा नहीं कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो दिखावा कर रहे थे। लेकिन वह कह रहा है, और हम अंततः उस बिंदु पर आएंगे, वह कह रहा है, यहाँ तक कि सबसे अच्छे मानव राजा, यहाँ तक कि सबसे वफादार मानव राजा भी भगवान नहीं है, और यदि तू उन पर भरोसा करेगा तो वे भी तुझे असफल कर देंगे। ईश्वर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आपको निराश नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसराइली राजाओं को लगातार अपने से परे परमेश्वर की ओर इशारा करना चाहिए था, जब उन्होंने अपने लिए शक्ति एकत्र करना शुरू किया और खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तभी समस्या उत्पन्न हुई। हाँ, और यही वह बिंदु है जिसे मैं व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। वह बढ़ाया हुआ हाथ या तो न्याय के लिए बढ़ाया जा सकता है या मुक्ति के लिए बढ़ाया जा सकता है, और यह हम पर निर्भर करता है कि वह क्या है। हाँ हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए अब अगले दैवज्ञ की ओर बढ़ते हैं, और एक ऐसा भाव है जिसमें हम मृत सागर को पार कर जाते हैं। पलिश्ती यहाँ है, यहूदा यहाँ है, मृत सागर यहाँ है, मोआब यहाँ है। मोआब और यहूदा के बीच हमेशा एक तरह का खराब रिश्ता रहा है। याद रखें, रूथ कहाँ से आई थी और वह उस परिवार से कैसे जुड़ी, क्योंकि वे बेतलहम के थे और यहूदा में अकाल पड़ने के कारण मोआब को गए। तो फिर यहाँ उनके बीच इस प्रकार का पारस्परिक संबंध है। यह बहुत संभव है, यह आज सच है, यहाँ का यह क्षेत्र अब पूरी तरह से सूखा है। मुझे यहाँ अपनी लाइन फिर से बनानी चाहिए। यदि आप आज एक उपग्रह चित्र देखते हैं तो यह वास्तव में लगभग सभी नमक के मैदान हैं और वास्तविक मृत सागर यहाँ है। इसराइल और जॉर्डन दोनों द्वारा जॉर्डन से इतना पानी निकाला जा चुका है कि मृत सागर लगातार मृत होता जा रहा है। लेकिन यह संभव है कि प्राचीन इतिहास में मृत सागर भी हमारी महान झीलों की तरह उठता और गिरता था, और यहूदा से मोआब तक जाना आसान था। उन्हें बेतलहम से उत्तरी छोर तक इस क्षेत्र तक जाने की जरूरत नहीं थी। अब इस बारे में एक बड़ी बड़ी चर्चा है कि मोआब वास्तव में कहाँ था। यहाँ का यह क्षेत्र वह क्षेत्र था जो रूबेन के गोत्र रूबेन को दिया गया था, और माना जाता है कि यह मोआब की मातृभूमि है। लेकिन यशायाह में जिन अधिकांश शहरों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे वास्तव में यहीं स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोआबियों ने काफी पहले ही रूबेन जनजाति को बाहर कर दिया था, उनके साथ अंतरजातीय विवाह, इस तरह की सभी चीजें। तो वास्तव में बाइबिल के समय में इस पूरे क्षेत्र को मोआब कहा जाता है, या मुझे कहना चाहिए संयुक्त राजशाही के समय में, डेविड और उसके बाद के राजाओं के समय में। इसलिए जब हम यहाँ मोआब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम मृत सागर के पूर्वी किनारे पर उस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर यहूदा भरोसा करने के लिए इच्छुक था। एदोम यहाँ नीचे दक्षिण में है, और एदोम और यहूदा के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। एदोमी लगातार यहूदिया क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यहूदी लगातार इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए वास्तव में यहूदा और एदोम के बीच मूल रूप से नफरत है। लेकिन मोआब के साथ यह सच नहीं था, बहुत अधिक कमजोर रिश्ता, कभी दुश्मनी तो कभी दोस्ती पर पहरा। और इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि इस अध्याय में क्या चल रहा है। 15:1-9 तक इस कविता में प्रमुख स्वर क्या है? क्या आपको वहां कुछ दोहराए गए शब्द दिखाई देते हैं? यह दुहक है, यह बिल्कुल सही है। पद 2 में मोआब विलाप करता है, पद 3 में हर कोई विलाप करता है और आंसुओं में पिघल जाता है, पद 4 वे चिल्लाते हैं, पद 5 मेरा हृदय रोता है, श्लोक 5 का अंत विनाश का रोना है। इसके आगे श्लोक 8, और फिर जो लोग टिप्पणियां लिखते हैं वे इस पर चर्चा करने में बहुत समय व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर आंदोलन उत्तर से दक्षिण की ओर है। जिन शहरों का उल्लेख किया गया है, ऐसा लगता है जैसे आपने उत्तर से शुरुआत की है। यह पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है मानो आंदोलन इसी तरह हो रहा है, और आप उन शरणार्थियों की कल्पना कर सकते हैं जो भाग रहे हैं, क्योंकि असीरियन दमिश्क से उत्तर की ओर किंग्स हाईवे से नीचे आ रहे होंगे और इसलिए हमला उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ होगा। और तुम इन लोगों को आने वाली अश्शूर सेनाओं से भागते हुए देखते हो। मुझे नहीं पता कि आपने द्वितीय विश्व युद्ध की तस्वीरें देखी हैं या नहीं, लेकिन विशेष रूप से एक तस्वीर है जो मुझे बहुत ही मनोरंजक लगी। यह फ्रांस के उत्तर से पेरिस की ओर जाने वाली एक सड़क है, और यह तब हुआ जब नाजियों की जीत हुई और फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया, और सड़क बिल्कुल सामान से अटी पड़ी है। बेबी बग्गी, ड्रेसर, किचन टेबल, मोटरसाइकिलें, कारें, शरणार्थियों ने जो भी सामान अपने साथ ले जाने की कोशिश की, और जैसे जैसे वे और अधिक भयभीत होते गए, आगे बढ़ने और आने वाली नाजी भीड़ से दूर जाने के लिए निकल पड़े। जब मैं यह अध्याय पढ़ता हूँ तो यही सोचता हूँ, क्या तुम मुआबियों पर भरोसा करोगे? क्या आप यह सोचेंगे कि वे आपको उस झंझट से बाहर निकाल सकते हैं जिसमें आप हैं? नहीं, वे खुद को बचाने में सक्षम नहीं होंगे, और वे जाते जाते अपना सामान बचाने में सक्षम नहीं होंगे। पद साथ, इसलिए जो कुछ उन्होंने अर्जित किया है और जो कुछ उन्होंने जमा किया है उसे वे विलो नदी के पार ले जाते हैं, और वह नाला यहीं इस क्षेत्र में नीचे है। अपने जीवन की जमा पूंजी के टुकड़े टुकड़े बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह कहता है, अंतिम श्लोक, श्लोक 9, डबोन का पानी खून से भरा हुआ है। डबोन प्रमुख शहरों में से एक था, क्योंकि मोआब के जो लोग देश के बचे हुए भाग के लिथे भाग निकले हैं उनके लिथे मैं डबोन पर और भी अधिक सिंह को चढ़ाऊंगा। तो यहां तक कि जो अवशेष दक्षिण की ओर भागने की कोशिश करेगा वह भी उत्तर से आने वाले इस शेर द्वारा निगल लिया जाएगा। अब मुझे यकीन है कि इसका संबंध मेरी उम्र से है, लेकिन मैं उस सामान को देखता हूँ और मैं अपनी पत्नी को इसमें नहीं लाऊंगा जो मैंने वर्षों से हासिल किया है। और जैसा कि किसी ने कहा है, कफन में जेब नहीं होती, और फिर भी हमारा कितना जीवन अधिग्रहण अधिग्रहण में व्यतीत होता है। फिर हम इस भूमि में उन सब से बच गए हैं जो दुनिया ने बहुत कुछ अनुभव किया है, सब कुछ खोने के मामले में। जैसा कि आप यूरोपीय इतिहास के बारे में जानते हैं, 1615 और 1645 के बीच मध्य यूरोप में अनिवार्य रूप से 30 वर्षों का अंतहीन युद्ध था। कहा जाता है कि जर्मनी में उन 30 सालों में पूरी आबादी की आधी मौत हो गई थी। उन्होंने 1615 में 12 मिलियन से शुरुआत की और 1645 में उनकी संख्या 6 मिलियन हो गई। शहर बार बार लड़ते रहे, और फिर हमारा सारा अधिग्रहण किस लिए, किसके लिए? तो आप कहते हैं, ओसवाल्ड, क्या आपको लगता है कि हम सभी को भिक्षु और नन बनना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैंने बस इतना कहा कि मैं बस अपने आप से यह कहता हूँ जितना मैं आपसे कहूँगा, चीजों को हल्के में लेने का क्या मतलब है। यह बिल्कुल सही है, यह सिर्फ सामान है, केवल चीजें। तो मैं मोआब के लिए रोता हूं, वह कहता है, उन पर भरोसा मत करो, यह विश्वास न करें कि वे आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं, और वे वह सारा सामान खोने जा रहे हैं जो उन्होंने हासिल किया है। फिर हम 16 की ओर बढ़ेंगे। देश के शासक के पास एक मिन्ना भेजो, सिला से मरुभूमि के मार्ग से सियोन की बेटी के पर्वत तक। खैर, फिर से सिला इस क्षेत्र में नीचे है। यह पेट्रा शहर को संदर्भित कर सकता है। आप में से कुछ लोगों ने उस चट्टानी शहर की तस्वीरें देखी होंगी जहां सभी घर और हर चीज इस क्षेत्र की घाटियों की दीवारों में काट दी गई थी। सिला चट्टान से देश के शासक के पास भेजो। खैर, अगर हम वहीं रुक जाएं, तो हम सोच सकते हैं कि यह मोआब का शासक है। लेकिन तुम आगे बढ़ो सियोन की बेटी के पर्वत पर। मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उड़ते हुए पक्षियों और बिखरे हुए घोंसले के समान हैं। अर्नोन यहीं से होकर मृत सागर में जाती है। ये लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, वे आपके शासक को संदेश भेज रहे होंगे। सियोन पर्वत पर शासक, और वे क्या कहेंगे? श्लोक 3, 4 और 5। सलाह दें। न्याय दो दोपहर के समय अपनी छाया को रात के समान बना लें। बहिष्कृतों को आश्रय दो। भगोड़े का खुलासा मत करो। मोआब के निकाले हुए लोग तुम्हारे बीच में वास करें। विनाशक से उनके लिए आश्रय बनो। जब अत्याचारी नहीं रहा और विनाश बंद हो गया, और जो पैरों तले रौंदता है वह भूमि पर से मिट गया। मोआबी क्या पूछ रहे हैं? वे यहूदा की शरणस्थली का दर्जा मांग रहे हैं। उन पर भरोसा मत करो। एक दिन ऐसा आएगा जब वे आपकी ओर रुख करेंगे। अब यह अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद 5। तब एक सिंहासन स्थापित किया जाएगा राजा, और यह स्थापित हो जाएगा। मेरा संस्करण यहां दृढ़ प्रेम कहता है। कुछ अन्य संस्करण क्या कहते हैं? ठीक है, यह अगला शब्द है ना? किसमें सिंहासन स्थापित होगा? दया, प्रिय दयालुपना, क्या किसी को अंदाजा है कि हम किस हिब्रू शब्द के बारे में बात कर रहे हैं? हेसेड, हाँ, यह वह हिब्रू शब्द है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और आप मुझसे फिर सुनेंगे। अंग्रेजी में अनुवाद न किया जा सकने वाला एक शब्द, ऐसा कोई भी अंग्रेजी शब्द नहीं है जो हिब्रू में इस शब्द के सभी अर्थों को समाहित करता हो। प्रेम, दया, दयालुता, कृपा, करुणा, वफादारी, दृढ़ प्रेम, प्रेमपूर्ण दयालुता, और सूची बढ़ती ही चली जाती है। एक श्रेष्ठ की एक निम्न के प्रति भावुक अटूट भक्ति, विशेषकर तब जब अयोग्य हो। एक शब्द जो अब तक हिब्रू के लिए अद्वितीय है, जो उल्लेखनीय है। अधिकांश हिब्रू शब्दावली आप अन्य सेमिटिक भाषाओं में पा सकते हैं। यह शब्द नहीं, यह शब्द पुराने नियम में लगभग 250 बार आता है। उनमें से लगभग 3/4 ईश्वर को संदर्भित करते हैं। तो इस सिंहासन को इस प्रकार के आत्मसमर्पण प्रेम द्वारा सबसे ऊपर चिह्नित किया जाएगा। और हम पहले हिब्रू कविता के बारे में बात कर चुके हैं। यह समानता नामक चीज द्वारा चिह्नित है, जहां पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्यांश को दोहराया जाएगा। खैर, हेस्ट का पर्यायवाची दूसरा शब्द है जो आपको यहां मिला है। वफादारी, जिसका अनुवाद सत्य भी किया जा सकता है, लेकिन यह एक विचार के रूप में सत्य नहीं है। यह रिश्ते में सच्चाई है। यह सच भी हो रहा है। यह राजा आत्मसमर्पण प्रेम प्रकट करेगा। यह राजा अपने हर वादे पर खरा उतरेगा। यह वादा लाएगा। और यहां अगला हिब्रू शब्द आता है जिसके बारे में हमने पहले बात की है, मिशपत लाएगा। इस शब्द का अनुवाद अक्सर न्याय या निर्णय के रूप में किया जाता है। वे खराब अनुवाद नहीं हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ इससे कहीं अधिक है। इसका अर्थ है ईश्वरीय आदेश। अन्याय की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो उस क्रम में नहीं है जैसा ईश्वर ने चाहा था। लेकिन यह केवल कानूनी समानता नहीं है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। यह वह है जो जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करता है। और अंतिम शब्द यह है कि वह सदैव वही करेगा जो सही है। बहुत खूब, और वह ऐसा कहां करेगा? श्लोक 5, ठीक मध्य में। वह ऐसा कहां करेगा? दाऊद के तंबू में। और यह दिलचस्प है, डेविड का घर नहीं, डेविड का महल नहीं, दाऊद के तंबू में। आपको क्या लगता है वे ऐसा क्यों कहते हैं? और यहां कोई गलत उत्तर नहीं है। मुझे नहीं पता यह क्या है। ओह तंबू, हां उस विचार का संदर्भ हो सकता है। हां डेविड एक प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन तंबू क्यों? मुझे वास्तव में इसी में दिलचस्पी है। हां हां हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, राजत्व का कोई दिखावा नहीं। हां तंबू बहुत चलायमान होता है, तंबू बहुत अनित्य है। यह दिलचस्प है कि अमोस इसी अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। जब वह वहां इसराइल के उत्तरी राज्य में भविष्यवाणी कर रहा था और 8.5 अध्यायों तक कह रहा था कि यह अनारक्षित न्याय और विनाश है, और फिर पुस्तक के अंतिम 6 या 7 छंदों में वह कहता है, हाँ लेकिन दाऊद के तंबू की मरम्मत की जाएगी और उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और यह लोगों के लिए छत्र बनेगा। तो फिर ऐसा लगता है जैसे आपके पास ईश्वर के बारे में यह विचार उसके अपने तरीके से है, न कि मानवीय जाल और शक्ति के तरीके से। और मैं इस संबंध में सोचता हूँ कि यीशु ने कहा जन्म लेना चुना किसी महल में नहीं बल्कि एक खलिहान में। तो जो चीज इस राजा को चिन्हित करने वाली है वह उसका महल नहीं होगा, यह उनका किरदार होगा। हमारे लिए इस पर काबू पाना बहुत कठिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक 6 हमें बताता है कि समस्या क्या है। गर्व, गर्व। चलो फिर शुरू करें। हम इन 66 अध्यायों के माध्यम से इस पर विचार करेंगे। जब मनुष्य स्वयं को परमेश्वर के विरुद्ध ऊंचा उठाता है तो परिणाम बिल्कुल पूर्वानुमानित होता है, वे अपमानित होने वाले हैं। इसलिए नहीं कि भगवान को उसकी स्थिति से ईर्ष्या होती है, इसलिए नहीं कि किसी क्रूर तरीके से वह कहने जा रहा है, ठीक है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, यह बस हकीकत है। अगर मैं वहां वापस शीशे में अपनी मुट्ठी तोड़ दूं तो 2 चीजें घटित होंगी। नंबर 1, शीशा टूटने वाला है और मैं कटने वाला हूं। क्यों? क्योंकि भगवान मुझसे नफरत करता है। नहीं, क्योंकि दुनिया इसी तरह बनी है। और यह वही बात है, केवल ईश्वर ही महान है। यदि मैं उसके विरुद्ध स्वयं को ऊंचा उठाने का प्रयास करूं तो परिणाम बहुत पूर्वानुमानित होगा, यह काम नहीं करेगा। यहां तो यह फिर से है। और फिर आप रोने के इस विषय पर वापस आते हैं। पद 7, मोआब मोआब के लिए विलाप करे। हर किसी को विलाप करने दो, शोक मनाने दो, पूरी तरह से त्रस्त हो जाओ। श्लोक 8, 9 और 10 में प्रयुक्त अलंकार क्या है? वहां किस कल्पना का प्रयोग किया जा रहा है? दाख की बारी, हां हां, बेल, वह फिर से दिखाई देने वाली है। निकट पूर्व की दुनिया में शराब खुशी और हंसी से जुड़ी है। जरूरी नहीं कि यह नशे जैसा हो जैसा कि हम इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपकी फसल अच्छी हुई है। आपके पास सर्दियों के दौरान पीने के लिए चीजें होंगी। आप पानी नहीं पी सकते, इसलिए आपको पीने के लिए कुछ चाहिए। तो पीने के लिए शराब होगी, खुशी और आनंद का कारण। और भगवान कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हर्ष और उल्लास नहीं, परंतु रोना और विलाप करना। और मोआब की तुलना दाखलता से की गई है। आप इसे वहां देखते हैं, विशेष रूप से पद 8 में। उन्होंने इसकी शाखाओं को नष्ट कर दिया है जो जसेर तक पहुंच गईं और रेगिस्तान में भटक गईं। इसके अंकुर विदेशों में फैल गए और समुद्र के ऊपर से गुजर गए। शायद मृत सागर की बात हो रही है। सो मोआब उस लता के समान है जो फैलकर फैल गई है, परंतु मैं सिबमेह की लता के लिथे यासेर के समान रोता हूं। हे हेशबोन और एलियला, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से भिगोता हूं, क्योंकि तुम्हारे धूपकाल के फल और तुम्हारी कटनी के कारण जय जयकार बंद हो गई है। फलदायक खेत से हर्ष और उल्लास छीन लिया जाता है। अंगूर के बागों में कोई गीत नहीं गाया जाता, कोई जय जयकार नहीं की जाती और कोई अंगूर के कोल्हू में शराब नहीं बांटता। मैंने चिल्लाना बंद कर दिया है, इस कारण मेरे अंतकरण मोआब के लिथे वीणा के समान विलाप करते हैं। यह काफी दिलचस्प है। मेरा पेट मोआब के लिए गुर्राता है, कीर हेरेसेत के लिए मेरा अंतरतम सु। यहां जो चीजें मुझे दिलचस्प लगती हैं उनमें से एक है, छंद 9, 10 और 11 में सर्वनामों पर ध्यान दें। जब आप बाइबल अध्ययन कर रहे हों तो सर्वनामों पर ध्यान देना हमेशा लाभदायक होता है। 9, 10 और 11 में प्रमुख सर्वनाम कौन से हैं? पहले व्यक्ति, मैं रोता हूं, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से भिगो देता हूं, मैंने चिल्लाना बंद कर दिया है, मेरे अंतःकरण कराह उठते हैं। मेरा अंतरतम स्व, अब मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले यह पहला व्यक्ति कौन है? मुझे लगता है कि हमारे पास दो विकल्प हैं। क्या रहे हैं? ईश्वर एक विकल्प है, दूसरा क्या है? यशाया? मुझे लगता है बस यही है। अब क्यों? मान लीजिए कि यह यशाया है। यशाया मोआब के लिए शोक क्यों मना रहा होगा? मुझे लगता है कि यह आम तौर पर सच है, लेकिन इस पूरे खंड में मोआब ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैं रो रहा हूं। यह वह शोक हो सकता है कि मैं शोक मना रहा हूं क्योंकि मोआब मेरी बात नहीं सुन रहा है। वह यशाया असफल हो रहा है। शायद यदि उसे कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखता तो वह बदल जाता है। मुझे लगता है कि यह विशेष रूप से सच होगा यदि यह यहूदा को संबोधित किया गया हो, और यह किताब के कुछ अन्य हिस्सों में भी सच है, परंतु यहां तो मोआब उनका पड़ोसी है। कोई अन्य विचार? क्या आप अभी भी यशायाह के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, 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 मुझे लगता है कि इसमें अधिकांशतः यशायाह ईश्वर की ओर से बोल रहा है, भगवान के रूप में बोल रहा हूं। खैर, मुझे लगता है कि एक संभावना बिल्कुल इस निकटता की अभिव्यक्ति है जो यहूदा और मोआब के बीच मौजूद है। वह एदोम के लिए रोने वाला नहीं है, वह पलिश्तियों के लिए रोने वाला नहीं है, लेकिन उन्हें उन लोगों के लिए पीड़ा महसूस होती है जो ऐतिहासिक रूप से उनके करीब रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक संभावना है। दूसरी संभावना, यदि यह ईश्वर और एक संकेत है तो मैंने चिल्लाना बंद कर दिया है। खैर, वह यशायाह नहीं है। यशायाह ने चिल्लाना बंद नहीं किया है, भगवान के पास है। यदि यह ईश्वर का संदर्भ है तो यह बहुत पीछे तक जा सकता है। याद रखें, मोआब का पूर्वज कौन है? बहुत मोआब और अम्मोन लूत की अनाचारी संतानें हैं। तो शायद यह बात बहुत पुरानी है कि लूत के माध्यम से जुड़ाव के कारण भगवान उनके लिए एक विशेष आकर्षण महसूस करते हैं। हाँ, 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 ओह, निस्संदेह। हाँ हाँ एदोम और मोआब दोनों ने मूसा ने अपनी भूमि से यात्रा करने की अनुमति मांगी और कहा कि वे अपना भोजन स्वयं प्रदान करेंगे, वे कुछ नहीं करेंगे। और एदोम और मोआब दोनों ने नहीं कहा। उन्हें रेगिस्तान के चारों ओर घूमना था, और जब वे ऐसा कर रहे थे तो एदोमी और मोआबी उनके साथ बुरा काम कर रहे थे। तो हाँ हाँ शत्रुता की सदियों और सदियों और सदियों हैं। और मैं इज़राइल में रहा हूँ। मैं कभी कभी इस डर से अपने पैर उठाना चाहता था कि कहीं ज़मीन से खून न बह निकले। ठीक है, आइए छंद 12 से 14 को देखें, 16.12 को देखें और अब 15.2 को देखें। अपनी परेशानी में वे क्या करने को इच्छुक हैं? उनके भगवान की ओर मुड़े। और यशाया उसके बारे में क्या कहता है? यह किसी काम का नहीं, यह किसी काम का नहीं। हाँ हाँ आज रात दुनिया भर में पुरुष और महिलाएं उन्हें छुड़ाने के लिए बेकार देवताओं के पास जा रहे हैं। आज रात भारत में उस भयानक भयानक आग के साथ वे आराम की तलाश में अपने देवताओं के पास जा रहे हैं, और वे इसे ढूंढने वाले नहीं हैं। मैं कभी नहीं भूला हूं, मैं बेंगलोर की एक सड़क पर चल रहा था और एक छोटी सी कार्यशाला से गुजरा, और मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी मूर्तियां बना रहा था। वह एक हाथी की देवी बना रहा था, और मैंने सोचा यार व्यर्थता के बारे में बात करो, लेकिन यह वहां है। किसी न किसी तरह मुझे इस दुनिया पर नियंत्रण पाना है, किसी न किसी तरह मुझे उन शक्तियों को प्राप्त करना है जो यहां मेरे समर्थन में पंक्तिबद्ध हैं। और बार बार यशाया कहता है नहीं नहीं, उसने तुम्हें बनाया, तुम उसे मत बनाओ। लेकिन हम इसे अपने दिमाग से पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। फिर श्लोक 13 और 14, फिर थोड़ा रहस्यमय। यह संस्करण कहता है कि यह वही शब्द है जो प्रभु ने अतीत में मोआब के विषय में कहा था। खैर अतीत में यह उतना स्पष्ट नहीं था जितना यह अनुवाद इसे प्रकट करेगा। 3 साल में एक किराए के कर्मचारी के वर्षों की तरह वह वाक्यांश पुस्तक में फिर से घटित होने वाला है। और विचार यह है कि ठीक है मैं एक गिरमिटिया नौकर हूं, मैंने खुद को 3 साल के लिए इस आदमी को बेच दिया है, और मैं दिनों की जांच कर रहा हूं। जितनी सावधानी से वह किराए का कर्मचारी कितने दिन का हिसाब रखता होगा, भगवान ने कहा है 3 साल 3 साल, और मोआब खत्म होने वाला है। और यहां फिर से मोआब की महिमा है, हमने इसे पहले भी देखा है, हम इसे पुस्तक के माध्यम से फिर से देखेंगे। पृथ्वी प्रभु की महिमा से भरपूर है। मेरी शान आपकी शान किसी राष्ट्र की शान, किसी भी शासक का तेज सूर्य की तुलना में अतुलनीय है, भगवान की महिमा की तुलना में। 3 साल और यह होने जा रहा है। मैंने इसे पहले भी कहा है, मैं इसे फिर से कहूंगा। यशाया जिन कुंजियों पर जोर देता है उनमें से एक यह साबित करती है कि यहोवा परमेश्वर है। क्या वह विशेष रूप से भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है? नहीं, आप जानते हैं यदि ऐसा होता है तो ठीक है, कुंडली नहीं। 3 साल मोआब चला गया है। अच्छा, क्या ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि ऐसा हुआ था, अन्यथा यह पुस्तक अस्तित्व में नहीं होती। हाँ, ईश्वर इस संसार का हिस्सा नहीं है, वह अंतिम चक्रों में नहीं फंसा है, वह दुनिया के बाहर खड़ा है और वह कह सकता है यही होने वाला है। और इसलिए वह कहते हैं राष्ट्रों पर भरोसा मत करो। ठीक है, 4 मिनट खत्म, बुरा नहीं। जाने से पहले प्रश्न या टिप्पणियां। हाँ, प्रेजेंट डे ऐसा लगता है कि इसराइल के पास बहुत सारे सहयोगी हैं। उनके पास बहुत सारे सहयोगी नहीं हैं, है ना? नहीं 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 नहीं। और कुछ? संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकलो। खैर, मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्दा यह है कि अमेरिका इसराइल नहीं है, चर्च इसराइल है। यदि आप एक के लिए एक समकक्षता की तलाश करना चाहते हैं, और इसलिए उस अर्थ में मुझे नहीं लगता, यहां मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि निषेध चर्च के लिए एक बड़ी आपदा थी। जब हमने एक ऐसे राष्ट्र पर ईसाई नैतिकता लागू करने का प्रयास किया जो 1920 में भी वास्तव में ईसाई नहीं था, तो फिर से मैं आपके प्रश्न को बहुत गंभीरता से लेता हूं। सवाल यह है कि हमारे लिए संदेश क्या है, और मेरा मानना है कि संदेश यह है कि हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें ईसाई होने के नाते अपनी सुरक्षा के लिए मानवता के देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारा नागरिक धर्म रहा है, जहां हम सत्ता के दलालों की जेब में रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह अगले 50 वर्षों में मौलिक रूप से बदलने वाला है, और उन दिनों में हमें कुछ निर्णय लेने होंगे। हम किस पर भरोसा करें? लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हमें ईसाई नागरिकों के रूप में कार्य करना है, और हमें ईसाइयों के रूप में अपने विवेक से मतदान करना है। लेकिन अगर हम अनिवार्य रूप से बुतपरस्त राष्ट्र पर ईसाई नैतिकता लागू करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह बहुत दिलचस्प है, और आप जानते हैं मैं यहां खुद को परेशानी में डाल लूंगा। निषेध नारीवाद की पहली बड़ी सफलता थी। यह महिलाएं ही थीं जिन्होंने निषेध को पारित कराया। कैरी नेशन, अच्छी ईसाई महिलाएं, गहराई से दोषी ईसाई महिलाएं। लेकिन मेरे लिए यह जानना बहुत दिलचस्प है कि क्या होगा यदि हमने वह संशोधन पारित नहीं किया होता, तो चीजें कैसे भिन्न होतीं? क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी तरह से तर्क दिया जा सकता है कि निषेध ने इस देश में भीड़ पैदा की है। तो यह एक जटिल प्रश्न का एक लंबा उत्तर है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम एक के लिए एक तुलना की तलाश करें, तो यह प्राचीन इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, यह प्राचीन इसराइल और चर्च है। और इसलिए आज हमारे लिए वहां क्या संदेश है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 8, यशायाह अध्याय 14 से 16 है।